है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यहुन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
कदमों में तेरे आए मसीहा, कदमों में तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जहां। कदमों में तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जहां। छोड़ के तेरी चौखट को यीशु, जाऊं तो जाऊं कहां, जाऊं तो जाऊं कहां। कदमों में तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जहां।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय मित्र और परिवार के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है। पिछले अध्ययन में हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय के परिचय और पृष्ठभूमि को देखा और हमने देखा कि 1000 वर्ष का राज प्रभु यीशु के द्वारा होगा। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन फिर से करने पाएं। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय अलग अलग स्थानों पर रेडियो के निकट बैठे हैं ताकि आपके वचन में से सुने और समझें, यही प्रार्थना है कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए। अपने वचन के द्वारा हर एक से बोले और बातचीत कीजिए ताकि प्रभु आज का अध्ययन भी हम में से प्रत्येक के आत्मिक जीवन में लाभ का कारण ठहरे। आज इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय से अध्ययन को जारी रखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि शैतान 1000 वर्ष के लिए बांधा गया। अध्याय 20 के आरंभिक पद 1000 वर्षीय राज के पूर्व की घटना का वर्णन करते हैं। आइए हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय उसके 1-3 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अताह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इबलिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अताह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूर्व होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। मेरे मित्रों, यहां आप देखेंगे कि पद 1-3 में 1000 वर्ष का उल्लेख 2 बार आया है। अध्याय 20 में 6 बार इसका उल्लेख किया गया है। यह सच है कि 1000 वर्ष का उल्लेख केवल अध्याय 20 में ही है, परंतु परमेश्वर 6 बार इसका उल्लेख करता है। परमेश्वर को कोई बात कितनी बार कहनी होती है, जो भी हो वह सच हो, वह उन अन्य बातों की तुलना में जिन्हें मनुष्य 1 या 2 बार ही धर्मशास्त्र में देखकर महत्वपूर्ण कहकर बल देता है, उससे तो कहीं अधिक परमेश्वर 1000 वर्ष का उल्लेख यहां करता है। 1000 वर्षों का उल्लेख 6 बार किया गया है और इस बार यह समय शैतान के संदर्भ में है। कुछ टीकाकार इस घटना को 1000 वर्षीय प्रभु राज से अलग करके यहोवा के प्रकोप के दिन के अंत से जोड़ते हैं। इस विचार के कारण पृथ्वी पर से शैतान के हटाए जाने के कारण उत्पन्न हुए उस विभाजन को भी गंभीरता में कम लाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि इस विभाजन के कारण उस गंभीरता में दबाव कम आता है। उसका बंदी बनाया जाना किसका? शैतान का। और पृथ्वी से हटाया जाना परिस्थिति को अंधकार से ज्योति में बदल देता है। वह इस युग का ईश्वर है और वह आकाश के शक्तियों का शासक है तथा इस संसार पर उसका प्रभाव और अधिकार असीमित है, जिसे कोई कंप्यूटर भी नहीं आंक सकता है। उसका हटाया जाना प्रभु राज का मार्ग तैयार करता है, क्योंकि उसके स्वच्छंद घूमने से पृथ्वी पर प्रभु राज स्थापित नहीं हो सकता है। अतः हम देख सकते हैं कि शैतान का प्रभु राज से संबंध इस प्रकार है कि उसे प्रभु राज के आगमन से पूर्व पृथ्वी पर से हटाया जाना अति आवश्यक है। मनुष्य पृथ्वी पर शांति स्थापित करने की बात करता है, समृद्धि लाने आदि की बात करता है और अनेक विषयों की चर्चा भी करता है, परंतु यह सांसारिक व्यवस्था अंततः ख्रिस्त विरोधी में जाकर समाप्त होगी, परंतु वह भी शांति और समृद्धि नहीं लाएगा, जबकि कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत होगा कि वह शांति और समृद्धि का राजकुमार है, परंतु इस पृथ्वी पर शैतान के रहते आदर्श लोक की स्थापना नहीं हो सकती है। उसके स्वतंत्र रहते हुए आप आदर्श राज्य नहीं देख सकते हैं। इसलिए लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, कहता है आगे, उसे पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। शैतान का सामर्थ कम हो जाएगा, क्योंकि एक साधारण स्वर्गदूत ही उसे बांध कर बंदी बना लेगा। आप देख सकते हैं यहूदा की पत्री 1-9 में प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 7-9 पद में यहां लिखा है, अताह कुंड, इससे अधोलोक कहें तो अधिक उचित होगा। यह पद 10 में व्यक्त आग की झील नहीं है। तब आगे देखते हैं, इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। धर्मशास्त्र का यह अंश समझ से परे है। एक बार परमेश्वर ने उसे बंदी बना दिया तो फिर उसे मुक्त करने की क्या आवश्यकता है? इस प्रश्न के लिए डॉक्टर लुईस स्पेरी शाफर का उत्तर अति महत्वपूर्ण है। यदि आप मुझे पहले यह बताएं कि परमेश्वर ने उसे मुक्त क्यों किया, तो फिर मैं बताऊंगा कि परमेश्वर ने उसे क्यों मुक्त किया। उसकी मुक्ति में परमेश्वर का एक महान उद्देश्य है। बुराई की एक बड़ी समस्या यही है, परमेश्वर उसे होने क्यों देता है। मेरा मानना तो यह है कि परमेश्वर एक महान योजना को पूरा कर रहा है, जो परमेश्वर का एक भेद है जिसका खुलना अभी बाकी है। एक दिन यह भेद प्रकट होगा। वह हमें केवल विश्वास में जीने के लिए कहता है। हमें परमेश्वर में भरोसा रखना है और जान लेना है कि वह जो भी करता है सही करता है। एक बार जब मैं छोटा था तब अपने पिता के साथ जा रहा था कि बड़ी आंधी उठी और मैं बहुत डर गया। पानी भी बरस रहा था और हम बहुत गीले हो गए थे। मुझे आज भी याद है कि मेरे पिता ने अपनी बाहें मेरे कंधे पर रखी और कहा, पुत्र मुझ पर भरोसा रख, और मैं उससे लिपट गया। इस प्रकार हम आंधी का सामना करते हुए पार लगे। मेरे पिताजी जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी चिंता करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर हमारी भी चिंता करता है और हमारी रक्षा भी करता है, हमें संभालता भी है। मेरे प्रियो, जीवन की आंधियों में हम अपने पिता के साथ पार हो सकते हैं। काश मैं आपको जीवन के समस्याओं का समाधान सुझा पाता, परंतु नहीं, मैं असमर्थ हूं। अतः हम अपने प्रभु परमेश्वर में भरोसा रखें, संसार में नहीं, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है। एक बार मैंने बुराई की समस्या पर एक पुस्तक पढ़ी, परंतु उस पुस्तक को पढ़ लेने के बाद भी बुराई की समस्या थी। लेखक के पास इसका समाधान नहीं था। उसने 200 पृष्ठों में वही कहा जो मैं एक वाक्य में कह सकता हूं। मेरे पास बुराई की समस्या का समाधान नहीं है, परंतु मेरे मित्रों, विश्वास का जीवन जीने पर एक दिन हमें इसका समाधान मिल जाएगा। परमेश्वर ने शैतान को 1000 वर्ष के लिए बंदी बनाया कि उसके बिना 1000 वर्ष को प्रभु राज्य आए, लोग देखें और जाने, महाक्लेश के भक्त जन प्रभु यीशु के साथ 1000 वर्ष राज्य करते हैं। हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 20 अध्याय उसके 4-6 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। महाक्लेश में अनेक जन प्रभु यीशु के लिए अपनी जान गंवाएंगे, अर्थात शहीद होंगे, परंतु वे फिर जी उठेंगे और प्रभु यीशु के साथ 1000 वर्ष राज करेंगे। महाक्लेश के भक्त जन 3.5 वर्ष कुचले जाएंगे कि 1000 वर्ष का लाभ उठाएं। मैं तो कहूंगा कि उनका यह सौदा बहुत अच्छा है। वे 3.5 वर्ष अति कष्टकारी होंगे, परंतु 1000 वर्ष अति उत्तम समय होगा। मेरे प्रियो, कल्पना कीजिए, प्रभु यीशु के साथ पृथ्वी पर 1000 वर्ष आप राज्य कर रहे हैं, आपको कैसे लगेगा? यह भविष्यवाणी धर्मशास्त्र की अन्य किसी भी भविष्यवाणी के समान है। दूसरा पत्रस की पत्री 1:20 पद में लिखा है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। अर्थात आप धर्मशास्त्र से किसी एक पद को लेकर उस पर सिद्धांत स्थापित नहीं कर सकते हैं। आपको धर्मशास्त्र के अन्य संदर्भों से उसे जोड़ना अति आवश्यक है। अतः ये पद वास्तविक तथ्यों का सम्मानित उल्लेख माना जाए तो यह तर्क सम्मत होता है और भविष्यवाणी की संपूर्ण योजना के साथ संयोजित होता है जिसे हम देखते आ रहे हैं। इसे आकर्षक चिन्ह एवं प्रतीक मानना इसे निरर्थक बना देता है। इसे शब्द जाल में बुनने का अर्थ है इसे वास्तविक अर्थ से वियुक्त कर देना, दूर कर देना और धर्मशास्त्र की व्याख्या को व्यर्थ कर देना। मेरे मित्रों, सिंहासन वास्तविक है, शहीद वास्तविक है, प्रभु यीशु वास्तविक है, परमेश्वर का वचन वास्तविक है, पशु वास्तविक है, मूर्ति वास्तविक है, पशु का चिन्ह भी वास्तविक है, माथे और हाथ वास्तविक हैं और हजार वर्ष भी वास्तविक समय है, सब कुछ वास्तविक है। हजार वर्ष का अर्थ हजार वर्ष है। यदि परमेश्वर का इससे अभिप्राय अनंत काल होता तो वह इसे स्पष्ट करता। क्या परमेश्वर अपना अर्थ स्पष्ट करने योग्य नहीं है? निश्चय ही वह योग्य है। और जब वह कहता है 1000 वर्ष, तो उसके कहने का अर्थ भी 1000 वर्ष ही है, क्योंकि वह हमारे लिए है। मूल भाषा यूनानी में पुनरुत्थान का अर्थ है खड़ा हो जाना, शरीर का खड़ा होना। आत्मा के लिए सीधा खड़ा होना कठिन है। जो इसे आत्मा का पुनरुत्थान कहते हैं, वे आत्मा के खड़े होने को नहीं समझा सकते। पौलुस भी पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय में प्रभु यीशु और विश्वासियों के पुनरुत्थान के लिए यही शब्द काम में लेता है। तब हम पढ़ते हैं, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए। यह स्पष्ट कथन नहीं है ये लोग कौन हैं। मेरे विचार में ये लोग प्रथम पुनरुत्थान के हर एक युग के उद्धार प्राप्त मनुष्य हैं जो उसके साथ बैठ गए। पहला पुनरुत्थान प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के साथ था। तदुपरांत 19 वर्षों के बाद से अधिक समय कलीसिया के उठाए जाने के समय सोए हुए विश्वासियों का पुनरुत्थान, जो महाक्लेश से पूर्व की घटना है, हम उसे पाते हैं प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में। महाक्लेश के बाद पशु की पूजा होती है, अर्थात पूजा करने वाले प्रभु यीशु और परमेश्वर के वचन के श्रद्धालुओं का संहार तथा पुराने नियम के भक्त जनों का पुनरुत्थान होता है। आप देखिए दानिय्येल नबी की पुस्तक 12 अध्याय उसके 1 और 2 पद में, पुनरुत्थान का पहला फल प्रभु यीशु अग्रगामी है। मेरे प्रियो, संसार का अंत हो जाएगा और प्रभु यीशु आएगा, मृतक जी उठेंगे। प्रभु यीशु अच्छे मनुष्यों को एक ओर रखेगा तथा बुरों को दूसरी ओर, दुष्टों को दूसरी ओर। इस प्रकार अनंत काल का आरंभ होगा। ऐसा मानना अपरिपक्व विचार है। मेरे मित्रों, परमेश्वर एक निश्चित योजना पर चल रहा है, जैसा उसने सदैव किया है, और वह बुद्धिमानी के कदम उठा रहा है। महाक्लेश और पुराने नियम के भक्त जन निश्चय ही प्रभु यीशु के साथ इस पृथ्वी पर राज करेंगे, और मेरे विचार में दाऊद प्रभु यीशु का सहायक शासक होगा। कलीसिया तो मसीह की दुल्हन है, वह नए यरूशलेम में वास करेगी, जहां से वह परमेश्वर की सृष्टि के एक विशाल भाग पर राज करेगी। प्रभु यीशु इस नए यरूशलेम और पृथ्वी पर स्थित यरूशलेम के मध्य आना जाना करता रहेगा। और मेरे विचार में तो कलीसिया भी अपने इस स्वर्गिक घर और पृथ्वी के बीच आना जाना करती रहेगी। इसराइल और अन्य जातियों में जो मरे नहीं, वे अपनी पार्थिव देह में ही प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। ये लोग और प्रभु राज्य में जन्म लेने वाले इस समय परखे जाएंगे। जिस प्रकार प्रभु यीशु अपनी महिमामय देह में अपने शिष्यों और अनुयायियों में उठता बैठता था, उसी प्रकार कलीसिया भी अपनी महिमामय देह में इस पृथ्वी पर उपस्थित पार्थिव मनुष्यों के साथ उठेगी और बैठेगी। वह अंतरिक्ष में यात्रा करने में सक्षम होगी। यह मेरी प्रथम अंतरिक्ष यात्रा होगी। जी हाँ, उस समय गुरुत्वाकर्षण शक्ति का बल मुक्त हो जाएगा और हम यहां वहां जा सकेंगे, और ये शक्ति मुझ पर काम नहीं करेगा। मेरे मित्रों, हम पढ़ते हैं, लिखा है, वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। यह संपूर्ण इसराइल के विषय में है। परमेश्वर का तो मूल उद्देश्य ही यही था कि वे उसके याजक हों, जैसा कि निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इसराइलियों से कहनी है वे ये ही हैं। अब्राहम अपने परिवार में याजक था, लेवी वंश याजक था, जिसमें हारून का परिवार महायाजक होता था। इस पृथ्वी पर जब प्रभु राज होगा, तब संपूर्ण इसराइल जाति याजक होगी। मेरे प्रियो, धर्मशास्त्र के इस अंश में अन्य किसी युग की अपेक्षा प्रभु राज की भविष्यवाणी है। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं का विषय ही परमेश्वर का राज्य था। मैं नहीं जानता कि आप इसके अन्य क्या व्याख्या करेंगे। आज हम छोटे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बहुत कम सुनते हैं। उनकी शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा रिक्त स्थान है। वे सब हजार वर्षीय प्रभु राज की बाट जो रहे हैं। आगे हम देखेंगे 1000 वर्ष के बाद शैतान की मुक्ति। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय उसके 7-9 पद में लिखा है, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालों के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारे पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। मेरे मित्रों, प्रकाशित वाक्य की संपूर्ण पुस्तक अंत समय की घटनाओं की चर्चा करती है, परंतु ये अंतिम अध्याय विशेष करके अंतिम घटनाओं पर बल देते हैं। यहां शैतान और मनुष्य का परमेश्वर से अंतिम विद्रोह है। प्रभु राज आदर्श परिस्थितियों में मनुष्य को परखने का समय होगा, जैसा कि इस अंश से प्रकट होता है। उस समय ज्यों ही शैतान मुक्त किया जाएगा, त्यों ही प्रभु यीशु के राज के अधीन आदर्श परिस्थितियों में रहने वाले मनुष्य का एक बड़ा समुदाय उसकी ओर फिर जाएगा। अब यह समुदाय कहां से आया? यह एक अच्छा प्रश्न है। प्रभु राज में प्रवेश करने वालों की संख्या असंख्य होगी और उनसे उत्पन्न संतान भी असंख्य होंगे। देखिए यशायाह नबी की पुस्तक 11 अध्याय के 6 पद में और 65 अध्याय के 20 पद में, वह समय पृथ्वी पर जनसंख्या विस्फोट का समय होगा। उस समय रोग नहीं होंगे क्योंकि पृथ्वी पर से शाप हट जाएगा। पृथ्वी बहुत बड़ी संख्या में मनुष्यों के लिए भोजन उत्पन्न कर पाएगी, परंतु सब कुछ बदल जाने के बाद भी मनुष्य का मन नहीं बदलेगा। इस कारण अनेक लोग परमेश्वर से फिरकर शैतान की ओर हो जाएंगे। विश्वास तो नहीं होता, परंतु आज की दशा ही आप देख लें। शैतान बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लोगों को अपनी जाल में फंसाता जा रहा है। प्रभु राज के बाद मनुष्य का यह विद्रोह प्रकट करता है कि मनुष्य का मन कैसा बुरा है। यर्मिया कहता है 17 अध्याय के 9 पद में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। जी हाँ, आप और मैं नहीं जानते कि हम कैसे निस्सार हैं। हम अपने पुराने स्वभाव को परमेश्वर के अधीन करने में असमर्थ हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 7 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। ये लोग 1000 वर्ष तो प्रभु राज में आदर्श परिस्थितियों में रहेंगे और मेरे विचार में वे प्रभु यीशु के राज्य से ऊब जाएंगे, क्योंकि वह निरंकुश शासक होगा और मनुष्य को धार्मिकता के मार्ग पर ही रहना होगा। वे इसे पसंद नहीं करेंगे और अवसर पाते ही विद्रोह कर देंगे। पृथ्वी की जातियां शैतान के जाल में फंस जाएंगी और विद्रोह का षड्यंत्र रचेंगी। इसलिए लिखा है गोग और मागोग। अनेक बाइबल विद्यार्थी इसे यहेजकेल नबी की पुस्तक 38 और 39 अध्याय का गोग मागोग समझ बैठते हैं। यह संभव नहीं है, क्योंकि यह विद्रोह समय, स्थान और सहभागियों में उसके तुल्य नहीं है। केवल नाम एक से हैं। यहेजकेल नबी की पुस्तक 38 और 39 अध्याय में गोग और मागोग का उत्तर दिशा से आक्रमण करके ख्रिस्त विरोधी की शांति भंग करना है, जिसके कारण वह महाक्लेश के मध्य हाथ उठा देगा। इस विधर्मी आक्रमण का प्रभाव मनुष्यों पर ऐसा होगा कि 1000 वर्ष के बाद भी मनुष्य का अंतिम विद्रोह उसी नाम से पुकारा जाएगा और वह है गोग और मागोग। मेरे प्रियो, पहले महायुद्ध का प्रभाव ऐसा था कि जब दूसरी बार महायुद्ध हुआ तो उसे द्वितीय महायुद्ध कहा गया, और अब मनुष्य को तीसरे महायुद्ध की प्रतीक्षा है। मैं इसका व्यक्तिगत उदाहरण देता हूं। एक परिवार में अनेक लोगों का नाम जॉन था। अतः जब किसी परिवार में एक बालक का नाम जॉन रखा गया, तब उसकी माता ने उसे केवल जे पुकारा कि वह अन्य सबसे अलग हो जाए। यहेजकेल नबी की पुस्तक 38 और 39 अध्याय में गोग और मागोग का युद्ध प्रथम युद्ध है, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय के 8 पद का युद्ध गोग और मागोग द्वितीय युद्ध है। नाम यद्यपि एक ही है, यह युद्ध पूर्णतः एक भिन्न युद्ध है। जी हां, शैतान का अंतिम विद्रोह है। दोनों युद्धों का एक ही नाम होने का अर्थ यह नहीं है कि युद्ध भी एक ही है। मेरे प्रियो, पद 9 में अंतिम परमाणु बम गिराया जाएगा। कहने का अर्थ है कि जिन प्राकृतिक शक्तियों द्वारा गोग मागोग प्रथम का नाश हुआ था, वही प्राकृतिक शक्तियां गोग मागोग द्वितीय को नष्ट करेंगी। परमेश्वर के विरुद्ध यह अंतिम विद्रोह वैसा ही निष्फल रहेगा जैसा अदन की वाटिका का प्रथम विद्रोह था। यहां मनुष्य द्वारा परमेश्वर की आज्ञा न मानने का आरंभ नहीं है, परंतु अंत दर्शाया गया है। यह मनुष्य के विद्रोह का अंतिम प्रयास होगा। अब बस केवल अंतिम न्याय ही रहता है जिसे हम देखने पर हैं। मेरे मित्रों, यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट कहता है कि शैतान बांधा जाएगा और छोड़ा जाएगा, और उस समय लोग उसकी ओर फिर जाएंगे। हम मनुष्यों की दशा को देख और समझ सकते हैं, परंतु देखें कि आप किसकी ओर हैं। आप अपने जीवन में विचार करें। यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
खून की बूंदों से तूने मसीहा मेरी कहानी लिखी है, खून की बूंदों से तूने मसीहा मेरी कहानी लिखी है, पापों की जलती से बचने को क्रूस से छाओ कहां। क्रूस से जाओ कहां कदमों